संप्रभुता के विभिन्न अर्थ। पहला, नामात्र की संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में होता है और इन विभिन्न अर्थों का अंतर ना समझने से भ्रम पैदा होता है। नामात्र की संप्रभुता शब्द का उपयोग उस राज्य या राजतंत्रीय शासन के लिए किया जाता है जो किसी समय में वास्तव में संप्रभु था, परंतु अब काफ़ी समय से वास्तविक संप्रभु ना होकर नामात्र का संप्रभु रह गया है। इंग्लैंड का राजा संप्रभु है कहलाता है, लेकिन उसकी संप्रभुता नामात्र की है। वास्तविक शक्ति तो बहुत समय पहले ही दूसरे के हाथों में चली गई थी, अतः राजा की संप्रभुता एक निरी कहानी है। दूसरा, वैधानिक संप्रभुता। प्राय वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किया जाता है। वैधानिक संप्रभुता राज्य में कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति है, केवल उसी के आदेश कानून होते हैं। वह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धांतों और जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सकती है। ऐसा संप्रभु इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट है। डाइमी के अनुसार संसद वैधानिक रूप से इतनी सर्वशक्ति संपन्न है कि वह एक बच्चे को पूरी उम्र घोषित कर सकती है, मरने के बाद भी किसी व्यक्ति को राजद्रोह का अपराधी बना सकती है। वह किसी जायज बच्चे को नाजायज घोषित कर सकती है, अथवा उचित समझे तो वह किसी व्यक्ति को उसके ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। यह वही निर्धारित व्यक्ति है जिसकी चर्चा ऑस्टिन की संप्रभुता अपनी व्याख्या में की है। अदालतें केवल उन्हीं कानूनों को मानती हैं जो ऐसी संप्रभु सत्ता से पैदा होती हैं। वैधानिक संप्रभुता की विशेषताएं यह है, यह एक निश्चयात्मक है और निश्चित होती है। दूसरा, यह किसी एक व्यक्ति समूह में निहित रह सकती है। तीसरा, यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और कानून द्वारा मान्य होती है। चौथा, केवल यही वैधानिक शब्दों में राज्य की इच्छा की घोषणा करती है। पांचवा, इसकी आज्ञाएं ना मानने का मतलब होता है कानून को तोड़ना और इसलिए दंड पाना। छठवां, अधिकारों की उत्पत्ति इसी से होती है। सातवां, यह परमपूर्ण, असीमित और सर्वोच्च होती है। तीसरा, राजनीतिक संप्रभुता। इस शब्द की परिभाषा करना उतना ही आसान नहीं। एक लोकतंत्रवादी देश में जबकि वैधानिक संप्रभु सबसे बड़ा कानून बनाने वाला और लागू करने वाला होता है, वहीं उसके पीछे जनता की इच्छा रहती है जो सभी प्रकार की आधार सत्ता का अंतिम और परम स्रोत है। यह वह सत्ता है जिसके फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। डाइसी के शब्दों में जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। इसी लेखक के अनुसार वह शक्ति राजनीतिक संप्रभु है जिसकी इच्छा को अंतिम रूप से राज्य के नागरिक मानते हैं। उन गिलक्राइस्ट इसकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं, उन प्रभावों का कुल योग जो कानून के पीछे स्थित है संप्रभु कहलाता है। जब हम राजनीतिक संप्रभुता की कोई उपयुक्त परिभाषा देने की कोशिश करते हैं तो बड़ा भ्रम पैदा होता है। यह अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट होता है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सके। उस देश में जहाँ प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र है, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता करीब करीब एक हुआ करती है। लेकिन अधिकतर देशों में जहाँ लोकतंत्र, वहाँ प्रतिनिधि मूलक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अतः वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता अलग अलग है। कुछ लेखक राजनीतिक संप्रभुता संगठित समाज में, कुछ आम जनता में, कुछ सामान्य इच्छा में तथा कुछ लोकमत में, और कुछ लोग उसे उन लोगों की शारीरिक शक्ति को में मानते हैं जो सफलतापूर्वक क्रांति कर सकते हैं। इन सभी में सत्य का कुछ अंश है, और यह कहना असंभव है कि इनमें से कोई एक शेष के मुकाबले में पूरी तरह सही है। इस भ्रम के कारण ही कुछ लेखक संप्रभुता को उसके वैधानिक अर्थों तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं और राजनीतिक संप्रभुता के विचार को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। गेटेल का कहना है कि वैधानिक संप्रभु के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभावों को सूची मात्र बना देती है। इसी प्रकार लीकॉक लिखते हैं, जैसे ही हम ऑस्टिन का रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। एक चीज जो बिल्कुल साफ है वह यह है कि संप्रभुता ही कानून है जो एक वकील और न्यायाधीश द्वारा मान्य है। लोकमत, सामान्य इच्छा, निर्वाचकों की इच्छाएं, क्रांति की संभावनाएं आदि सभी वैधानिक संप्रभु के निश्चयों पर असर डालती है, लेकिन वे ना तो वैधानिक संप्रभु की भांति निश्चित होती हैं और ना ही संगठित एक सुव्यवस्थित राज्य के लिए जरूरी है कि उसमें वैधानिक संप्रभु की सर्वोच्च सत्ता हो, जिसकी आज्ञाएं अधिकांश नागरिक संभवतः मानते हैं। साथ ही साथ जनता के मनचाहे परिवर्तनों को कानूनी तरीकों से लागू करने के लिए जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। चौथा, जनवादी संप्रभुता। जनवादी संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता का वास्तविक स्वाभाविक विकास है। जनवादी संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम सत्ता जनता के हाथ में रहती है। यह सिद्धांत रूसो के उपदेशों का आधार बना। रूसो ने इस सिद्धांत की घोषणा डंके के चोट पर की 19वीं सदी में। लोकतंत्र के विकास के साथ इस सिद्धांत को यहाँ तक बल मिला कि सभी स्वतंत्र देशों में यह मान लिया गया है कि जनता की राजनीतिक अधिकार सत्ता की अंतिम अधिरक्षक या मालिक है। वैधानिक संप्रभुता यदि जानबूझकर लगातार जनता की इच्छाओं का विरोध करती रहे तो यह अधिक समय तक नहीं टिक सकती, क्योंकि अंतिम हालत में जनता बल प्रयोग कर सकती है और क्रांति करके एक नई सरकार बना सकती है। आजकल जनता का नियंत्रण और लोकप्रिय शासन शब्दों का उपयोग लोकतंत्र शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता है। इस उपयोग से यह साफ प्रकट हो जाता है कि वैधानिक संप्रभुता पर समूची जनता का अंतिम निर्णय होता है। यद्यपि जनवादी संप्रभुता का सिद्धांत बहुत ही आकर्षक है और उसमें जनता की अहम भावनाएं संतुष्ट होती हैं, पर जब हम इस धारणा का विश्लेषण करने और उसके एक निश्चित अर्थ देने की कोशिश करते हैं तो कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। जितना ही अधिक हम इस पर विचार करते हैं उतना ही अधिक उसकी परिभाषा करना कठिन हो जाता है। राजनीतिक संप्रभुता की सभी आलोचनाएं इस पर लागू होती हैं। जनवादी संप्रभुता की परिभाषा करने में जनता शब्दों के निम्नलिखित को दो संभावित अर्थ किए जा सकते हैं। पहला, असंगठित अनिर्धारित समूची जनता। दूसरा, निर्वाचक समुदाय। यह स्पष्ट है कि जनता शब्द का जो पहला अर्थ है उसके अनुसार जनता संप्रभु नहीं हो सकती। दूसरे अर्थ में यदि जनता को किसी भी माने में संप्रभु बनना है तो वह केवल वैधानिक तरीकों से ही काम कर सकती है। गार्नर के शब्दों में असंगठित लोकमत चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, वह समय उस समय तक संप्रभु नहीं बन सकता जब तक उसे वैधानिक स्वरूप न दिया जाए, ठीक उसी प्रकार जैसे कि विधायिका के सदस्यों का गैर सरकारी रस्मी और व्यक्तिगत प्रस्ताव कानून नहीं बन सकता। व्यवहारिक तौर पर जनवादी संप्रभुता का अर्थ है शांति के समय लोकतंत्र और युद्ध के समय क्रांति की शक्ति से अधिक जान पड़ता है। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए जनवादी संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता के बहुत कम अंतर रह जाता है। गिलक्राइट तो इस अंतर पर बहुत अधिक जोर देते हैं, कहते हैं कि जनवादी संप्रभुता व्यवहारिक दृष्टि से राजनीतिक स्वाधीनता तथा जनता द्वारा नियंत्रण के समान ही है। जनवादी संप्रभुता का अर्थ जनता की इस शक्ति में व्यस्त मताधिकार, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा विधायिका का नियंत्रण और जनता द्वारा चुने गए सदन का राष्ट्र की अर्थनीति पर नियंत्रण आदि निहित है। इसके विपरीत गेटेल की राय है, जनता की संप्रभुता एक शाब्दिक अंतः विरोध है। लॉस्की का कहना है कि राजनीतिक संप्रभुता केवल यही अर्थ मालूम होता है कि समाज के किसी खास अंग की अपेक्षा समूचे जनसमूह हितों की वरीयता मिले, लेकिन इससे तो समस्या हल नहीं होती। हाँ, विवाद अवश्य छिड़ जाता है। जनवादी संप्रभुता की परिभाषा करने में हमें चाहे जितने भी कठिनाई क्यों ना हो, पर इस सिद्धांत में यह महत्वपूर्ण विचार छिपे हैं। पहला, सरकार का अस्तित्व स्वयं अपने कल्याण के लिए नहीं, उसका अस्तित्व जनता के लिए है। दूसरा, यदि जनता की इच्छाएं जानबूझकर कुचली जाती हैं तो क्रांति की संभावना बनी रहती है। तीसरा, लोकमत की अभिव्यक्ति के लिए आसान वैधानिक तरीकों की व्यवस्था बराबर रहनी चाहिए। चौथा, जल्दी जल्दी चुनाव, स्थानीय शासन, जनमत संग्रह, लोक आदेश प्रत्यावन के द्वारा सरकार को सीधा जनता के प्रति जिम्मेदार बनाना चाहिए। पांचवा, विधिवत और वास्तविक संप्रभुता। संप्रभुता वास्तविकता का प्रश्न है और इसलिए कभी कभी कानून और वास्तविक संप्रभुता के बीच भेद किया जाता है। कानूनी संप्रभु वैधानिक होता है, अर्थात कानून से संप्रभु मानता है, और वास्तविक संप्रभु वह है जिसकी आज्ञा जनता वास्तव में मानती हो, वैधानिक तौर पर यह संप्रभु हो या ना हो। वास्तविक संप्रभुता शारीरिक बल पर या धर्म के बल पर टिक सकती है, परंतु कानूनी संप्रभुता का आधार कानून होता है और कानून उसे यह अधिकार देता है कि वह अपनी आज्ञाओं को मनवाए। कानूनी और वास्तविक संप्रभुता का अंतर विद्रोह के दिनों में करने वाले व्यक्तियों में कुछ परिवर्तन ही करती है, पर कुछ क्रांतियां पुराने वैधानिक संप्रभु को एकदम समाप्त करके उसके स्थान पर नया संप्रभु बनाती है। ऑस्टिन बिल्कुल स्पष्ट होता है, कुछ क्रांतियां केवल सरकार के शासन यंत्र में या शासन ने वास्तविक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में कोई अंतर नहीं माना था, क्योंकि ऑस्टिन का कहना है कि सरकारें वास्तविक और कानूनी तो हो सकती हैं, लेकिन वैध और अवैध दोनों का उपयोग संप्रभुता के लिए नहीं किया जा सकता। वास्तविक संप्रभुता को अवैध मानना गलत है, क्योंकि संप्रभुता का तत्व ही वह शक्ति है जिसके बल पर लोगों को अपना आज्ञाकारी बनाया जा सकता है। हर देश की आंतरिक शांति और व्यवस्था के हित में यह जरूरी है कि कानूनी और वास्तविक संप्रभु एक ही हो, और यदि कभी दोनों में संघर्ष हो जाए तो संघर्ष अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में शक्ति और न्याय दोनों का मेल होना चाहिए। जैसे ही एक वास्तविक संप्रभु अपने आप को स्थायी रूप में प्रतिष्ठित कर लेता है, उसकी वैधानिक स्थिति भी बनने लगती है और अंत में वह कानूनी संप्रभु बन जाता है। इसका एक ही उदाहरण काफी है। चीन व चियांग काईसेक का शासन समाप्त कर देने के बाद तुरंत ही साम्यवादी सरकार वास्तविक तौर पर संप्रभु हो गई थी। वह आज तक शासन पे काबिज है और कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला नहीं। अनेक देशों ने, जिनसे भारत भी शामिल है, उसे मान्यता प्रदान की है। अतः चीन की साम्यवादी सरकार वास्तविक और कानूनी दोनों ही संप्रभुताओं को पूर्ण मानी जा सकती है।